नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। भारत सरकार ने कनाडा से दर्जनों राजनयिकों को देश से वापस बुलाने को कहा है। इस पूरे घटनाक्रम के परिचित के लोगों के मुताबिक नई दिल्ली ने ओटावा से कहा है कि उसे 10 अक्टूबर तक लगभग 40 राजनयिकों को वापस बुलाना होगा। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस मामले को लेकर किसी तरह का बयान जारी नहीं किया। ये फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है। अखबार ने कहा कि कनाडा के भारत में 62 राजनयिक हैं और भारत ने कहा था कि कुल संख्या 41 कम की जानी चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार के होने का आरोप लगाने के बाद दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दिया है। इस वजह के रहते नई दिल्ली और ओटावा के बीच राजनयिक संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में एक बहस के दौरान आरोप लगाया था कि कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के पास ये मानने के कारण है कि भारत सरकार के एजेंटों ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को अंजाम दिया, जो सरे के गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के अध्यक्ष भी थे। हालांकि भारत ने दावों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे बेतुका बताया था। यूरोप देश स्लोवाकिया में आम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। रॉबर्ट फिको एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये चौथा मौका होगा जब वह पीएम पद की कमान संभालेंगे। फिको को रूस का समर्थक माना जाता है। चुनाव से पहले ही उन्होंने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद को बंद किया जाएगा। चुनावी नतीजों के मुताबिक स्लोवाकिया में गठबंधन सरकार बनेगी। स्लोवाकिया के पूर्व सीएम रॉबर्ट फिको की वामपंथी पार्टी स्मेर या डायरेक्शन पार्टी को आम चुनावों में 22.9% वोट मिले। यहां संसद में सदस्यों की कुल संख्या 150 है, इनमें से 42 सांसद इसी पार्टी के हैं। समीर पार्टी गठबंधन बनाने में सफल रही तो रॉबर्ट फिको चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बता दें कि स्लोवाकिया में राष्ट्रपति जुजाना कापुतोवा को अमेरिका का समर्थक माना जाता है। रॉबर्ट फिको उन पर अमेरिकी एजेंट होने का आरोप भी लगा चुके हैं। इसे लेकर राष्ट्रपति की ओर से उनके खिलाफ मुकदमा भी दाखिल किया गया। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा का अमेरिका के मेरीलैंड में 14 अक्टूबर को उद्घाटन किया जाएगा। 19 फुट की इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया, जिसे प्रसिद्ध कलाकार एवं मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। सुतार ने ही गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई थी। आम्बेडकर की प्रतिमा मेरीलैंड के एकोकीक शहर में 13 एकड़ भूमि पर बनाए जा रहे आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का हिस्सा है। AIC ने कहा, ये भारत के बाहर बाबा साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा है और इसे इस केंद्र में बनाए जा रहे आम्बेडकर स्मारक के एक हिस्से के रूप में स्थापित किया जा रहा है। उसने कहा, इस कार्यक्रम में अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में आम्बेडकरवादी आंदोलन के प्रतिनिधियों और उनके अनुयायियों की बड़ी संख्या में शामिल होने की उम्मीद है। AIC ने बताया कि ये स्मारक बाबा साहब के संदेशों एवं शिक्षाओं का प्रसार करेगा और समानता तथा मानवाधिकार के प्रतीक को प्रदर्शित करेगा। प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को होगा, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिका के नॉर्थ डिकोटा राज्य से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद डग लार्सन, उनकी पत्नी और दो बच्चों की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। एक सांसद ने सोमवार को ये जानकारी दी। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेता डेविड हॉग ने सोमवार को अपने साथी सांसदों को भेजे ईमेल में लार्सन के निधन की पुष्टि की। ग्रैंड काउंटी शेरिफ विभाग ने फेसबुक पर एक बयान में कहा कि विमान रविवार शाम मुआब से लगभग 24 किलोमीटर दूर कैनियन लैंड्स हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अहिंसा व विविधता में एकता के उनके संदेशों को याद किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, इस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर हम महात्मा गांधी की जयंती मनाते हुए उनके संदेशों को याद करते हैं। गुतारेस ने महात्मा गांधी के संदेशों का हवाला देते हुए कहा, विविधता में एकता कायम करने की हमारी क्षमता ही हमारी सभ्यता की सुंदरता और कसौटी होगी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने लोगों से आह्वान किया कि उनके संदेशों का स्मरण करते हुए इस उद्देश्य को पूरा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। स्पेन के मर्सिया शहर में एक नाइट क्लब में आग लगने की घटना में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य अब भी लापता हैं। ये क्लब बगैर परमिट के संचालित किया जा रहा था। इससे पहले दक्षिण पूर्वी क्षेत्र मर्सिया में राष्ट्रीय सरकार के प्रतिनिधि फ्रांसिस्को जिमेनेज ने स्पेनिश टेलीविजन को बताया था कि सभी लापता लोगों का पता लगाया गया है तथा कोई और शव नहीं पाया गया है। उन्होंने बाद में कहा कि लापता व्यक्तियों के आंकड़ों में कुछ भ्रम था। स्पेन की सरकारी समाचार एजेंसी EFE ने कहा कि आग रविवार को सुबह करीब 6 बजे एक नाइट क्लब में लगी और दो अन्य में फैल गई। सभी शव प्रथम नाइट क्लब में मिले हैं। घटना में 24 लोग घायल हुए हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।